Assalamualaikum everybody, this is episode 5 of Ba-Khabar. Last time what we spoke of, हमने बात की IMF के बारे में और हमें ये पता चला कि मुख्तलिफ खसानों की वजह से, which includes the fiscal deficit as well as the current account deficit, हमारा रिश्ता, ये love affair जो है वो पिछले 60 साल से चल रहा है. 22 times we've gone back to the IMF. And there was a very interesting note that Faiz ended on, which was के IMF के पास जाने का benefit एक ये था, that IMF would probably in the next 2-3 years be able to mobilize about $30 to $35 billion. We will be able to mobilize from different lenders. Ab $35 billion ki jab aap baat karte ho to aapko lagta hai ki bahut paisa aane wala hai, lekin ye paisa jo hai wo sood samet aapko wapas bhi karna hai. To is karze ki adaigi jo hai wo badi important hai. Jo ye ek bahut hi hassas topic hai, karza. So इस पे मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है हर जगह, चाय से लेकर आपके आपके घर में. बट ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है. कर्जे की वजह से आपकी नशोनुमा पे क्या फर्क पड़ता है. जब हमने देखा कि स्टेट बैंक से अगर आप पहले कर्जा लेते थे तो उससे पाकिस्तान की रगों में ज्यादा पैसा दौड़ता है, तो फिर इससे महंगाई होती है. अगर आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं तो यू क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. आप बैरूनी ममालिक से जब आप कर्जा लेते हैं तो उसके साथ भी उसकी कंडीशन अटैच होती है. सो देयर इज It's a complicated topic. Devaluation se kya farak padta hai isse. So there's a lot of things that we have to unpack here, which is why we have the perfect person with us today, Faiz, who's made it a mission for himself to break down complicated topics into simpler, easier ways to understand. So welcome today again, Faiz. And I would want to start off with a question ki abhi पाकिस्तान के कर्जों की, इस हुकूमत पे कर्जे की और पिछले हुकूमतों से जो आने वाले कर्जे हैं, उसका स्टेट, उसकी सिचुएशन है क्या?
थैंक्स अनिल, मुझे ये नहीं पता कि मैं परफेक्ट पर्सन हूँ टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई एम श्योर देयर आर पीपल मच बेटर इक्विप्ड टू आंसर दिस, लेकिन थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ मैं. सो इन जनरल, डेट की जो हमारी सूरत हाल है अभी पाकिस्तान में, आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई है. सो typically how you talk about debt is debt to GDP. See, aap dekhte hain ki aapka government ka debt kitna hai, public debt kitna hai, total country mein debt kitna hai, aur usko apni GDP se compare karte hain, right? So ye ek jo ratio hota hai kafi common hai, debt to GDP. To throughout this episode I think hum ye wala ek ratio discuss karenge. To Pakistan mein wo jo abhi ratio hai na, takriban koi 85% के करीब है. कुछ इंक्लूड चीजें आप करते हैं तो वो और ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लगभग 85-87% के करीब है. ये अभी की सिचुएशन है. इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर गवर्नमेंट जो आती है ना, उसमें ये रेशियो बढ़ता है. और वी नो जनरली के ब्लेम गेम चलता है, लेकिन ब्लेम गेम की हम थोड़ी देर में बात करेंगे. बट लेट्स टेक हिस्ट्री इनटू अकाउंट. जब पीपीपी का टाइम था, ये नंबर जो था डेट टू जीडीपी 60% के करीब रहता था, उससे कम ही होता था, ठीक है. उसके बाद जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, ये नंबर 70% तक चला गया, ठीक है. अब अभी जैसे मैंने बोला, पीडीआई की गवर्नमेंट में 80-85% से भी ऊपर चला गया है. ये हर गवर्नमेंट में बढ़ी रहा होता है नंबर. व्हाट आई लाइक टू फोकस ऑन इज, आपने जैसे अभी ब्रेकअप बताया डेट का, कि इंक्रीज तो हर गवर्नमेंट की टाइम में हुआ है, लेकिन ब्रेकअप को क्या हुआ है, राइट? व्हाट यू विल नोटिस द बिग डिफरेंस बिटवीन पिछली गवर्नमेंट और अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में, कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो कंपोनेंट है ना, जो बेसिकली आपने बोला कि बाहर से कर्जे ले सकते हैं हम, या फिर अंदरूनी बैंक से एटसेट्रा हम लोन्स ले सकते हैं, उसका रेशियो जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट में और बढ़ गया है. सो अभी फिलहाल जो है 1/3 हमारे लोन जो है वो फॉरेन उससे आते हैं, एक्सटर्नल लोन्स हैं, और बाकी जो 2/3 है वो डोमेस्टिक उससे आते हैं. तो अभी ये फिलहाल हमारी सूरत हाल है कि ये अभी ब्रेकडाउन है. इंटरेस्टिंगली ये थोड़ी चीजें हैं जो बजट में इंक्लूड होती हैं एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ठीक है. डोमेस्टिक जो है लोन्स एज सच आपको पे बैक नहीं करने पड़ते. अब जो ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है ना डोमेस्टिक लोन्स का, वो परमानेंट होता है. अब परमानेंट का मतलब, पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है. अब वो बॉन्ड इज लॉन्ग टर्म, आपको पे बैक बहुत बाद में करना पड़ेगा, उस पर सूद आपको ज्यादातर देना पड़ता है, ठीक है. जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो इस साल के दौरानिए में ही आप पे बैक कर देते, तो वो भी बजट नजारा नहीं करना होता. सो जो आपका गवर्नमेंट का एंड ऑफ द ईयर बजट आएगा उसमें सिर्फ सूद फॉर डोमेस्टिक लोन पे बैक करना होता है. जो फॉरेन लोन है ना उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है बजट में. तो आपको बजट में उसका सूद भी इंक्लूड करना होता है और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो के लोन का एक्चुअल अमाउंट पे बैक करना है वो भी इंक्लूड करना पड़ता है. तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक कंसिडरेशन है सोचने के बारे में कि बजट में क्या चीज इंक्लूड होती है और उससे इवेंचुअली फिर मैं बोल इसलिए लाऊं क्योंकि यही दोनों चीजें फिर इवेंचुअली फिजिकल डेफिसिट कॉज करती हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट इन लिटिल व्हाइल.
सो अगला जो इसका सुवी वर्डना पिक्चर ऑफ के सिचुएशन क्या है कर्जे की, ठीक है, जो अगला एंड सबसे कॉमन जिस पे फड्डा होता है और वो फड्डा इस बात पे होता है हर हर चाय पे बैठे हुए गुफ्तगू में, वो ये होता है कि हर चाय की गुफ्तगू में नहीं, हर न्यूज चैनल पे, हर ऑपोजिशन की रैली में, चाहे कोई भी ऑपोजिशन में हो, वो ये है कि कर्जे जो है, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है और कर्जे कर्जों की जो जो कसूरवार है वो पिछली हुकूमतें हैं या एट द वेरी लीस्ट पिछली हुकूमत है. इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, एंड कसूरवार जो है वो किसको ठहराया जा सकता है.
ठीक है, तो इस पॉइंट पे अच्छा ये होगा कि हमें अभी एक चार्ट लगाएं और दिखाएं कब से कहां तक कौन सी गवर्नमेंट में कितने लोन्स बढ़े हैं. ठीक है, तो आप उसमें चार्ट में जो अगर देखेंगे कि ड्यूरिंग द पीपीपी टाइम 90% लोन्स बढ़े थे, तो ये शुरुआत और आखिर तक उनके जो टेंडर था. सेम पीएमएलएन के टाइम पे ये 75% ऊपर गया था. अभी तक पीटीआई के उसमें कोई अगर पिछले दो साल का देखें तो 45% तक ऊपर गया है. अभी मेरे ख्याल से कोई 52-53% तक पहुंच गया है इंक्रीज सिंस यू स्टार्टेड गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ब्लेम गेम तो हर दफा होता है कि किसकी वजह से कितना हमारे लोन्स बढ़े थे. इंटरेस्टिंगली सब बोलते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से हमें डेट सर्विस बहुत ज्यादा करनी पड़ी और उसकी वजह से हमें और लोन्स लेने पड़ रहे हैं. एंड यूजुअली मैं सोचता था ये पॉलिटिकल रेटरिक है, छोड़ दो, मतलब ऐसे ही यू नो नंबर्स वोंट रियली चेक आउट. अगर आप नंबर्स देखना शुरू करें यू विल सी दैट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली चेक्स आउट के उन्होंने जितने लोन्स लिए हैं राइट बजट की फाइनेंसिंग के लिए जितने लोन्स लेते हैं ऑलमोस्ट उतनी ही आपकी डेट सर्विस होती है. अब डेट सर्विस क्या है, ये जो तीन चीजें मैंने अभी पिछली दफा अभी मेंशन की थी कि फॉरेन कंट्री के लोन्स पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और डोमेस्टिक जो हमारी लोन्स हैं उस पे इंटरेस्ट, ये तीन चीजों को बोलते हैं डेट सर्विस. तो डेट सर्विस की अगर आप कंपेयर करें कि गवर्नमेंट ने बजट फाइनेंसिंग के लिए कितने लोन्स लिए, यू विल सी दे आर ऑलमोस्ट द सेम. अब पीएमएलएन के टाइम पे क्या हुआ था, पीएमएलएन के टाइम पे उनके पांच सालों में उन्होंने तकरीबन लोन इंक्रीज करे थे कोई लगभग 10 ट्रिलियन रुपयों से. ठीक है, इनमें से कोई 8.3 ट्रिलियन जो था वो बजट की तरफ गया था, बजटरी बोरोइंग कहलाती है ये. ठीक है, बजटरी सपोर्ट के लिए बोरोइंग 8.3 ट्रिलियन और डेट सर्विस वॉज 8.5 ट्रिलियन. सो ऑलमोस्ट नंबर एक ही है, राइट. सो दे कैन एक्चुअली से कि हाँ हमने जो लोन्स अपने बढ़ाए बजट के लिए वो डेट सर्विस के लिए ही थे. ठीक है, उसके अलावा जो थोड़ा कंपोनेंट होता है लोन्स का वो यूजुअली मतलब आप सोच लें बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए हो गया या फिर जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करी थी या फिर डीवैल्यूएशन से आपके नंबर चेंज हो गए लोन्स के सोर्स का अमाउंट चेंज हो गया, बट उसकी थोड़ी देर में अभी बात करते हैं. पीटीआई की गवर्नमेंट में आप देखेंगे पिछले दो साल में यस द नंबर्स आर हायर कि वो 10 ट्रिलियन उन्होंने पांच साल में करे थे, पीटीआई ने दो साल में 11 ट्रिलियन से अपने कर्जे बढ़ा दिए हैं. बट अगेन वो आप बेस कंपेयर करें कि उस वक्त बेस कितनी थी, पीएमएलएन के जमाने में 14 ट्रिलियन थी, पीटीआई के जमाने में कोई 24 ट्रिलियन थी, तो उसके ऊपर इंक्रीज 11 ट्रिलियन इज नॉट एज बिग अ डील एज इट साउंड्स लाइक. इस 11 ट्रिलियन में से तकरीबन 6.8 ट्रिलियन वाज फॉर बजट. ठीक है, और 6.8 ट्रिलियन को आपको कंपेयर करना चाहिए इनकी डेट सर्विस से और डेट सर्विस से इनकी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन. ठीक है, तो अगर आप ये जो स्टेटमेंट है हर गवर्नमेंट की कि हम लोन्स इंक्रीज करते हैं पुराने लोन सर्विस करने के लिए, इट इज एक्चुअली नॉट एन इनएक्यूरेट स्टेटमेंट. और सो लाइक द ब्लेम गेम, हु इज टू ब्लेम, आई थिंक इट्स करेक्ट टू से कि हाँ हम पिछले गवर्नमेंट की वजह से लोन्स ले रहे हैं, बट इट्स इनकरेक्ट टू से दैट दैट्स एन एनोमली. हर किसी के साथ यही होता है. सो ये सिर्फ कोई पीटीआई गवर्नमेंट के साथ नहीं हो रहा, यही पीएमएलएन के साथ भी हो रहा था, उससे पहले पीपीपी के साथ भी हो रहा था कि हर गवर्नमेंट को लोन्स पिछली गवर्नमेंट के रिपे करने पड़ते हैं विथ इंटरेस्ट. पीटीआई गवर्नमेंट ने एक थोड़ी एक्सेप्शनल चीज ये हुई है और वो पीएमएलएन के एंड में ही शुरू हो गई थी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डीवैल्यूएशन से क्या होता है। डीवैल्यूएशन से एक्सटर्नल डेट, जो फॉरेन डेट जिसकी हमने अभी तक बात करी है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप पीएमएलएन का टाइम देखें, उसमें डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, उनकी जो लोन्स थे, जो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स होंगे, वो अगर डॉलर 100 से 120 तक चला गया उनके टाइम पे, 20% ऊपर चला गया, तो उससे लोन्स की वैल्यू भी तकरीबन 20% ऊपर जानी चाहिए है। तो उनके लिए पीएमएलएन के लिए कोई 1 trillion हुआ था पाकिस्तानी रुपए इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेट बिकॉज ऑफ दिस। पीटीआई की गवर्नमेंट में 2 साल में कोई 3 trillion का इम्पैक्ट पड़ चुका है बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। अगेन, इसके लिए हम एक चार्ट अभी दिखा देंगे कि अगर आप उसको देखें विदाउट डिवैल्यूएशन तो लोन्स हमारे क्या होते हैं, विद डिवैल्यूएशन लोन्स क्या होंगे, और पीटीआई का इम्पैक्ट अभी तक कितना ज्यादा हुआ है। सो आई थिंक टू थिंग्स टू ब्लेम दैट यू टिपिकली हियर इन हेडलाइंस एक्चुअली आर क्वाइट स्पॉट ऑन। हमाद हज़र ने एक दफा बोला था एक स्पीच में कि डिवैल्यूएशन ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट, और वो बिल्कुल दुरुस्त है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और क्या आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हर गवर्नमेंट ब्लेम कर सकती है बिकॉज सबके खसारे बढ़ते हैं डेट सर्विसिंग की वजह से। ये खसारा जब तक खत्म नहीं होगा, और जैसे हमने पहले बात करी है, जब तक हम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज नहीं करते या फिर रेवेन्यू कलेक्शन ओवरऑल इंक्रीज नहीं करते, जब तक ये नहीं करते, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और देखते हैं आगे कैसे लेके चलते हैं इसको।
तो ये समझ लेंगे उसी तरह है, अगर मेरी नौकरी चली जाए, मेरे पास नौकरी ना हो, तो मैं एक दोस्त से कर्जा लूं, और क्योंकि मेरे पास उस कर्जे को वापस करने की साख नहीं है, तो मैं दूसरे दोस्त से कर्जा लूं और उसको वापस कर दूं। तो ये तब तक ये साइकिल खत्म नहीं हो सकता जब तक मेरी आमदनी में इजाफा ना है, मतलब मेरी नौकरी ना लग जाए, और अगर मेरी नौकरी है तो मेरी उस नौकरी की आमदनी में इजाफा ना हो जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट वाज कि मैंने शाहजेब खान दादा के शो पे भी देखा था, देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने बोला था कि अगर डॉलर बाहर से आ रहा है तो ये भी तो अच्छी बात है कि अब ज्यादा आएगा, क्योंकि 150-160 पे डॉलर है, दिस इज लॉन्ग टाइम अगो, तो पैसा ज्यादा आ रहा है। तो वेरी लॉजिकल ऑफ शाहजेब खानजादा टू आस्क कि सर ये वापस भी तो करना है। तो सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने बोला कि यार वो तब की तब देखी जाएगी। सो हमें इतना तो पता चल गया कि देखें, जिसको कसूरवार ठहराना है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेटरिक की जगह बात फैक्चुअली सेम ऐसी ही है कि हर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग में पैसा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जहां हमें पता मुश्किल चले कि कसूरवार किसको ठहराना है, वहां ये तो जरूर पता है कि कर्जे, हम कर्जेदार किसके हैं। सो कैन यू टेल अस अबाउट कि यार वेदर इज IMF, इट्स बायलैटरल डोनर्स, डोमेस्टिक, हमारा अभी करंट ब्रेकअप है क्या, किसके कर्जदार हैं हम?
आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इतने लोगों को लाइक ब्रेकअप इतना समझ में नहीं आता। शुरू में मैंने बोला था कि 2/3 हमारे जो लोन्स हैं वो डोमेस्टिक हैं। ठीक है, वो डोमेस्टिक लोन्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक लोन्स हमारे पाकिस्तान में जो है, आप दो किस्म के समझ लें। एक तो होता है शॉर्ट टर्म, तीन किस्म के एक्चुअली, एक तो लॉन्ग टर्म परमानेंट डेट है जिसकी मैंने पहले बात करी थी। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होगा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें आई थिंक कर भी सकते हैं। ये वो वाले जो आपने एक जमाने में 13.5% पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गए लॉन्ग टर्म, ये कोई बनाते हैं 40% ऑफ आवर डोमेस्टिक डेट। उसके अलावा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आते हैं, जो ये 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, अप टू अ ईयर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये बाकी प्रोपोर्शन बनाते हैं, दैट्स आल्सो रफली 20%। सो 60% लॉन्ग टर्म हमारी परमानेंट है और 20% ये शॉर्ट टर्म। और फिर बाकी चीजें आती, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है अगर आपने उसके बारे में सुना हो, और थोड़ी सी इस्लामिक वो भी बॉन्ड भी होते हैं एटसेट्रा इंक्लूडेड ओवर हियर। बट द टू थिंग्स टू कीप इन माइंड इज के एक लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का, और एक शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है ये ट्रेजरी बिल्स का। अब This is also a change, so मैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे स्टेट बैंक की तारीफ हर जगह करना बहुत अच्छा लगता है, तो इधर मैं थोड़ी सी ये करूंगा कि अप टिल 2019 मैंने पहले मेंशन कर चुका है कि आप स्टेट बैंक से भी बोरो करते थे। ठीक है, आप अगर स्टेट बैंक से बोरो करते थे, आप उसको एक क्रेडिट कार्ड की तरह ट्रीट करते थे। तो हमारी ये भी बात हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म जो पहले कंपोनेंट होता था ना, वो एक्चुअली उलट परमानेंट का उलट होता था कि 60% शॉर्ट टर्म होता था और 20% परमानेंट लॉन्ग टर्म होता था। और उससे मसला क्या होता है कि आप थिंक ऑफ इट एज अ स्टार्टअप। आप स्टार्टअप की तरह अगर सोचें कि हर तकरीबन महीने आप सोच रहे होते हैं मेरे अगले महीने पैसे कहां से आएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म आपको बहुत शॉर्ट टर्म सोच रखनी पड़ती है, आई यू थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, आपकी लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता बिकॉज आप हर दफा सोच रहे होते हैं ये बुक्स बैलेंस कैसे करें हम, ठीक है। तो अगर पिछली गवर्नमेंट में जो एक क्रिटिक आता है वो ये आता है कि वो अकाउंटेंट की तरह सोचते थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह नहीं सोचते, अकाउंटेंट की तरह सोचते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग कम्स बिकॉज आपको पता है आपको डेट रिप्लेनिश करना है अपना हर महीने, ठीक है, ये MTBs मार्केट ट्रेजरी बिल्स कराते हैं, आप स्टेट बैंक से जाके बोरो कर रहे हैं वो इन्फ्लेशनरी हो रहा है, आप बैंक से बोरो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहे हैं, दैट्स ऑल्सो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे आपने शुरू में बात करी। लॉन्ग टर्म आपको देने को इतना कोई तैयार नहीं है, ठीक है, आप कोशिश भी करते हैं आपको इतने ज्यादा नहीं मिल रहे, तो ये सारे इश्यूज चल रहे। तो जब रजा बाकी राय उन्होंने एक जो एक ट्वीक किया था वो ये था कि लेट्स चेंज दिस स्ट्रक्चर, तो आपको एक बहुत ही विजिबल चेंज दिखेगा ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है ये, ठीक है, तो ऑफ लोन्स कि आपको देखा कि मैच्योरिटी प्रोफाइल जो है वो बढ़ गई, बढ़ा दी, ठीक है, कि आप शॉर्ट टर्म इतना ज्यादा ना सोचे, शॉर्ट टर्म सही है आप थोड़ा बहुत आपको पैसे चाहिए होते हैं तो वो अभी कोई 20% होगा, लॉन्ग टर्म इज वॉट has been converted into Pakistan investment bonds हो गए। तो ये basically domestic end पे ये हमारे अभी breakup है of creditors. Usually banks, पहले state bank भी होता था, remember state bank अब हमने खत्म कर दिया है कि state bank से हम पैसा नहीं लेते। External is what's जो बाकी third of loans है external credit का, that's I think pretty interesting because as expected China is your biggest creditor, ठीक है, but China isn't just your biggest creditor in country terms. So countries, वो तो आपको पता है कि हमारा iron brother is giving us money. Even in commercial, अगर आप commercial loans देखें ना जो public आप sector enterprises ले रही हैं, उसमें भी China Chinese banks are the highest. तो ये दो component मिला के Chinese loans, I think if I'm not wrong, are close to 27% of all loans that you have. This should put this into perspective versus the IMF. के IMF is only 8%. Of आपका जो टोटल लोन्स हैं वो IMF की लोन्स आते हैं। अच्छा अब इसमें मसला, आई विल नॉट से कोई मसला as such है, but there is a difference between bilateral loans जो कि ये होते हैं चाइना से हो गए, सऊदी अरेबिया से हो गए, UAE से हो गए, कि ये आपको आपने जैसे बोला वापस भी करने होते हैं, बहुत जल्दी वापस करने होते हैं, ठीक है, तो आई थिंक so ये जो bilateral loans है इसमें कोई 60-70% loans जो है आपको अगले 3 साल में पे बैक करने हैं। अभी आपको कोविड की वजह से UAE ने अभी रिसेंटली $2 billion का रिलीफ प्रोवाइड करा है, आई थिंक पिछले हफ्ते ही हुआ है, वरना उससे मतलब, बट दीज लोन्स नीड टू बी पेड बैक इन द नेक्स्ट 3 years. तो ओवरऑल अगर आप सारे अमाउंट इंक्लूड करें और आप देखें अगले 3 साल तक कितने लोन्स आपको पे करने, 3 साल इन द सेंस IMF का प्रोग्राम जब खत्म होगा तब आपको लोन्स कितने पे बैक करने हैं, तो ओवर 90 बिलियन आपके अभी लोन्स हैं, उसमें से 37 बिलियन बाय द एंड ऑफ 3 years पे बैक करने पड़ेंगे, ठीक है, दैट्स द इशू दैट आई थिंक पीपल नीड टू थिंक अबाउट व्हेन दे थिंक अबाउट एक्सटर्नल डेट, कि इनको पे बैक कितने टाइम में करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा। आपने मसले जो अब क्रिएट कर लिए हैं फ्रांस के साथ, अगेन आई डोंट वांट टू डू एनी पॉलिटिकल कमेंट्री, तो पेरिस क्लब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिटर होता है फॉर मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, पेरिस क्लब में आते हैं कंट्रीज लाइक फ्रांस आता है, द यूएस, जापान हु फॉर अस इज द बिगेस्ट क्रेडिटर इन द पेरिस क्लब, इनसे आपने बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए और बहुत अच्छे रेट पे कंसेशनरी टर्म्स पे होते हैं, ठीक है, इनसे आपको पैसे बाद में वापस करने पड़ते हैं तो आपको इतनी झंझट नहीं होती, ठीक है, थिंक अबाउट मल्टीलैटरल्स जो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी हो गई या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF is also multilateral as well. हाँ, IMF के साथ थोड़ी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, थोड़ी that you need to follow, लेकिन इन जनरल ये लोन्स भी थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं और कंसेशनरी होते हैं, तो अगर आप इनकी ये डिफरेंस देखें, बायलैटरल लोन्स आपको थोड़े ज्यादा जल्दी वापस करने पड़ेंगे, and as I said ये budget होने होता है आपके fiscal deficit में, if you look at multilateral loans या फिर Paris club के साथ loans या फिर bonds भी अगर आप देख लें वो थोड़े और long term होते हैं, so that's the mix that we should ideally be going for, because ये short term financing की वजह से external debt में जो है वही मसला आना है जो हमें पहले domestic debt में आता था, which is you in short termism you used to think about अगली मेरी repayment आ रही है मैं इसको pay कैसे करूँगा, सो वो शॉर्ट टर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी थोड़ी क्रीप इन होना शुरू हो जाएगी. को अभी इतने में रियलिस्टिक नंबर आपको कंपेयर करके दिखा नहीं सकता फॉर दिस ईयर, इज बिकॉज हमने पहले भी मेंशन करा 2021 में ये सारी रीपेमेंट्स कैंसिल हो गई थी, फॉरवर्ड हो गई थी, राइट, विच इज गिव अस रिलीफ ड्यूरिंग द ईयर.
Which makes 2022 an important year within the current government's tenure. Is it going to be a problem? Are the loan repayments going to be a problem?
It's an interesting question. I think broadly speaking, is 85%, humne shuru mein bola, if I can rephrase this question, is 85% debt to GDP or 87% debt to GDP a problem? अब इसको बहुत सारे तरीकों से हम देख सकते हैं. मैंने शुरू में बोला है कि माय फेवरेट कंट्री टू कंपेयर अस टू इज बांग्लादेश. अब बांग्लादेश इज, उनका फिस्कल फ्रेमवर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट, देयर ग्रोथ रेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उनका डेट टू जीडीपी जो है वो 35% है. अब आप, आई नो आप 85 से 35% तक तो नहीं आ सकते, ठीक है. इंडिया योर नेक्स्ट डोर नेबर वॉज एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड 83-85% तक वो भी पहुंच गया, ठीक है. उनको कोई 70% होते थे पहले, लेकिन ड्यूरिंग कोविड एक स्पाइक आई, उनकी भी उनको लोन लेने पड़े काफी ज्यादा फॉर देयर कोविड रिस्पॉन्स. हम जो कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा नहीं लेने पड़े, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज मे बी इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि एहसास प्रोग्राम वॉज पार्टली ऑलरेडी बजटेड फॉर बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम जो मैंने पहले मैंशन करा था. तो पाकिस्तान की डेट इतनी ज्यादा कोविड में स्पाइक नहीं करी है, विच वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अदर कंट्रीज. अगर आप लो इनकम कंट्रीज देखें, डेवलपमेंट कंट्रीज देखें, यू विल सी दैट लोन स्पाइक्ड ड्यूरिंग कोविड, कोई 90% तक पहुंच गए. इमर्जिंग मार्केट्स की अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें, पाकिस्तान वॉज टिपिकली बिलो दैट एवरेज बिटवीन 2000 and 2017 as well. जो एवरेज अगर आप लेंगे वो पाकिस्तान कम होता था, और अब जो है इट बिकम इन लाइन विद इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है. ऑल ऑफ दिस टू से पाकिस्तान माइट नॉट हैव अ ह्यूज डेट प्रॉब्लम, बिकॉज आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आप सही लगते हैं, ठीक है. कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि अमेरिका तो 100-150% ऑफ GDP डेट में बैठा हुआ है. रिमेंबर, अमरीका कैन प्रिंट डॉलर्स, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर और कुछ नहीं हो सकती आपके पास कि आप डॉलर्स प्रिंट कर सकें. जापान उधर बैठा हुआ है ओवर 200% के साथ ऑफ GDP, उनका भी प्रोग्राम बिल्कुल ही डिफरेंट है. एज एन इन्वेस्टर आपको सोचना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज को जो है ना आप बहुत आसानी से पैसे देते हैं ये सारे लोन्स देने के लिए. अगेन आप सन एंड यूर क्लोजर टू द स्टॉक मार्केट, तो आपको ये भी समझ में आता होगा. जब आप एनालिसिस करते हैं आप सोचते हैं अच्छा आप डेट टू, आप देखते हैं कि डेट टू EBITDA क्या है, या फिर कुछ ना कुछ आप लेवरेज रेशियोज चेक करते हैं आप एक कंपनी के उनकी लिक्विडिटी प्रोफाइल कैसी है, आगे जाके वो अपनी डेट सर्विस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. एग्जैक्ट सेम थिंग कंट्री के लिए भी, कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, सारी रेटिंग एजेंसी जो है, मूडीज हो गई, S&P हो गई, वो बिग कंपोनेंट फॉर देम जो वो चेक करते हैं वो यही है डेट टू GDP रेशियो, कि आगे जाके आप भाई आप अपने अभी अगर फिलहाल आप ग्रो कर रहे हैं एट व्हाटएवर 4.55%, आप आगे जाके ये डेट सर्विस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, दैट्स व्हाट दे लुक फॉर. तो डेवलप कंट्रीज में ये इशू नहीं होता, बिकॉज वो जानते हैं एस्टैब्लिश्ड कंपनी की तरह उसको देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिलायबल कैश फ्लोज आते हैं इनके, टैक्स रेवेन्यू इतना ज्यादा है, आराम से फ्यूचर में ये पैसे जब भी चाहिए होंगे हमें वापस मिल जाएंगे, ठीक है. तो आप 100% ऑफ GDP कर लो, आप 200% ऑफ GDP कर लो, नो इश्यूज. इमर्जिंग मार्केट्स में वो थोड़ा और देखते हैं कि पब्लिक डेट टू GDP आपका कितना है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है कि वो वापस पे बैक कर ले. और जितनी रिलक्टेंट होंगे इन्वेस्टर्स पैसे डालने में, रिमेंबर उतनी ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगी, ठीक है. सो अगर आपकी रेटिंग, आई डोंट रिमेंबर व्हाट आवर रेटिंग इज राइट नाउ, बट आई नो इट्स जंक एंड इट्स नॉट हायर देन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड अभी. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती आपको इंटरेस्ट रेट और कम देना पड़ता, अगर जंक है आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है. मे बी एट सम पॉइंट वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस एज वेल. लेकिन ओवरऑल, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, पाकिस्तान डज नॉट रियली हैव अ ह्यूज डेट प्रॉब्लम, बट इट कुड इन द वेरी नियर फ्यूचर, इट शुड डेफिनेटली केयर अबाउट द डेट बर्डन जो अभी बढ़ रहा है इनका, 85% जो चला गया.
सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस, बिकॉज IMF का भी, आई थिंक 2014 का वर्किंग पेपर है, which shows के डेट टू GDP रेशियो जब आपका बढ़ता है, व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन ग्रोथ. बड़ा आसान होता है हर किसी के लिए कि आप जब गूगल करते हैं तो आपको चाइना डेट टू जीडीपी रेशो हाईएस्ट, तब आपको चाइना देखेगा, आपको जापान देखेगा, एक्चुअली जापान देखेगा, यूएस देखेगा, और आप बोलेगा यार 100-150% पे अगर ये हैं तो जब ये जिंदा रह सकते हैं तो हमारे लिए क्या मसला है. बट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर कंट्रीज दैट आर स्ट्रगलिंग टू इंक्रीज देयर इनकम एंड लिंक टू व्हाट यू हैव स्पोकन अबाउट देयर प्रोडक्टिविटी. And so it could be a problem moving forward if this continues and this is it's not fixed.
Wait, but right now, I think you've highlighted pretty well ke issues kya hote hain, lekin ye productivity jo aapne mention kara, isme kuch na kuch jaag jata hai mere andar hamesha. To productivity ki agar hum soch raha investment jo efficiency thi ke investment ki humne baat kari hai, FDI ki aane ki baat kari hai, all of those investors are also looking at this. Wo bhi dekh rahe hain ki acha reliably agar main paisa dalta hu Pakistan mein wo वापस कैसे मिलेगा मुझे, राइट? तो सारी जो हमने सॉल्वेंसी की बात करी है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर. सो ये एक डेट टू जीडीपी एक कंपोनेंट है, हमें थोड़ा होलिस्टिकली इसके बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इसके बारे में वरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए.
सो ब्रिलियंट एग्जांपल दैट यू गिव इज कि यार जब लेवरेज बढ़ेगा, जब डेट टू जीडीपी बढ़ेगा, जब मुल्क तो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी ऑफ डेट एंड टू सर्विसेज पेमेंट्स उस पे असर पड़ेगा. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज मूविंग ऑन टू करंट टाइम्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज बीन देयर इन द पास्ट. इसके कोविड 19 के सिनेरियो में जब 90 कंट्रीज आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ी हैं, जब पाकिस्तान इज नॉट ओनली गेटिंग डेट रिलीफ बट इज ऑल्सो प्रोबेबली मोर एक्सपेक्टेंट ऑफ के यार हमें और डेट की जरूरत पड़ेगी, इज दैट द केस? डू वी नीड मोर डेट राइट नाउ? डज इट इफेक्ट आवर एबिलिटी टू सर्विस डेट गिवन के इकोनॉमी में, ग्रोथ में, ये सारी चीजों में चेंज आएगा? व्हाट इज द इफेक्ट दैट कोविड हैज हैड ऑन द डेट सिनेरियो?
सो अभी मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था कि लो इनकम कंट्रीज में जो है डेट टू जीडीपी स्पाइक कर दिया, तो ये हमें एक चार्ट दिखाना चाहिए फॉर दिस कि आप 2020-2021 में देखेंगे तो बाकी ममालिक में ये लोन्स थोड़े स्पाइक किए हैं, इमर्जिंग मार्केट में इन जनरल स्पाइक नहीं करे और पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा नहीं बढ़े, विच इज गुड फॉर अस. ठीक है, अब क्यों नहीं बढ़े? वन थिंग इज कि हमारी फिजिकल डेफिसिट इतना हाई नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट करा था, हमने सोचा था कोई 8.5-9% तक चले जाएगा, वो 8% से कम ही हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ और ये 1% मैटर्स अ लॉट इन दीज टर्म्स. तो पहली बात तो ये है कि हमारे कोविड में इतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई जितनी हमने सोची थी कि होगी. ठीक है, वेल डन ऑन द गवर्नमेंट फॉर दैट. फिजिकल मैनेजमेंट मैंने पहले भी बोला है, मॉनिटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी तो उसमें हमें इतने मसले नहीं आए. आगे जाते हुए भी अगेन अगर आप IMF का प्रोग्राम की रिपोर्ट पढ़ें, और अच्छी रिपोर्ट है सबको पढ़नी चाहिए, तो आपको एंड यू डू सम मैथ यू विल रियलाइज के हमें IMF के पैसों की एडिशनली जरूरत नहीं है. ठीक है, $6 बिलियन है हमें, एक्चुअली $6 बिलियन के बगैर भी हम जो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है ये हम पूरी कर सकेंगे. ठीक है, बट लाइक आपने भी ये जैसे शुरू में मेंशन किया था कि हमें IMF की वजह से जो सारी और फंडिंग मिलती है, वर्ल्ड बैंक से मिल गई, हमें ADB से मिल गई, ये सारी मल्टीलैटरल से मिल गई, बाकी भी अगर कंट्रीज से मिल गई, ये मिसिंग होती है हमें हमारे लिए. ठीक है, तो अगर हमें ये अगर फाइनेंसिंग नहीं मिलती फिर जाके हमें मसला होता. I don't think for now we will have much of a external debt repayment issue. Interest rates bhi domestically low hain, 7% pe aap abhi issue kar rahe hain. Thodi bahut resistance aa rahi hai agar aap, but I don't want to get into ye thodi complications ki ab domestic debt issuance hoti kaise hai. Lekin basically government try koshish kar rahi hai ki kam se kam sood pe loans le, aur banks koshish kar rahe hain ki interest rate badhe future ka at least. तो बिकॉज जस्ट बिकॉज अगर इन्फ्लेशन आ रही है अब फ्यूचर में, आप देख रहे हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, तो वो बैंक्स को उसमें फ्यूचर में यील्ड चाहिए. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम. आई डोंट थिंक इतना इशू होगा आपको लोन्स रिपे करने में इन द नेक्स्ट 3 years.
There's also more complicated areas of that include debt. Debt reprofiling hai, debt rescheduling hai, but those are very complicated issues that we can get to later on. We encourage you to send us your questions. We encourage you to send us more topics. If you would want us to do a more detailed discussion on this, we can probably have a completely different video on all of these complicated issues. But basics ye hain, aur ye basics hi bahut ahem hain for you to have any intelligent conversation regarding debt. Sirf is pe nahi ho sakta ki pichli government ne ki galti hai ya is government ki galti hai ya whatever, right? Ya devaluation se kuch ho gaya. These blanket statements don't do too well and don't have a place in intelligent conversation. So what we've understood today is Pakistan ki surat hal debt ki situation hai kya, right? Kisko aap kasurwar thehra sakte hain aur kisko nahi, right? Karzdar hain kaun? और हमारा मवाजना किन ममालिक से होना चाहिए. इट कांट बी एज सिंपल एज जापान के पास इतना और यूएस के पास इतना. सो आई थिंक दिस इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ मीट, अ लॉट ऑफ मैटर फॉर यू टू थिंक अबाउट, टू रिसर्च. वी विल गिव यू द लिंक्स. देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ट्स इन दिस फॉर यू टू डाइजेस्ट, प्रॉबली पॉज एंड डाइजेस्ट, बिकॉज दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट्स फॉर यू टू हैव एज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. एंड आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट एपिसोड, दिस हैज बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू फैज़. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, till the next episode, keep sending us your feedback and your questions. And until next time, Allah Hafiz.